सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की आंध्र प्रदेश यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में हैं। एक दिन का उनका दौरा है। इस दौरे के दौरान उन्होंने नंदयाल डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर पे सबसे पहले मत्था टेकने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने प्रोग्राम का शुरुआत किया और वो उसके बाद कुरनूल में भी एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। ये दौरा खास करके जो विकास के कार्य हैं उनके उद्घाटन, उनके फाउंडेशन स्टोन को रखने के लिए था। जैसा कि हमें भारत सरकार के द्वारा बताया गया है कि ये 13,340 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स में हैं, जिसमें इंडस्ट्री भी है, एनर्जी पावर के भी सेक्टर्स हैं, सड़कों और महामार्गों का भी इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवेज के हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। हम सभी ने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री इस तरह के किसी दौरे पर होते हैं वो कुछ चीजों के बारे में खास करके बात करते हैं। नाउ उनका जो स्पीच है या उनके जो आइडियाज हैं वो सेंटर्ड होते हैं आत्मनिर्भर भारत पर, विकसित भारत 2047 की जो वो बात करते हैं 21, और उन्होंने ये कहा आज के स्पीच में भी कि 21वीं सदी जो है वो भारत की सदी होने वाली है। मिस्टर सुरेश, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये दौरा प्रधानमंत्री का केवल आंध्र प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है या भारत के एज सच जो डेवलपमेंट का जो इनिशिएटिव है उसके कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है, कैसे देखते हैं आप इस दौरे को?
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है ये। स्थानीय विकास, राज्य का विकास और राष्ट्र का विकास, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री इसमें गए। शुरुआत इसमें जैसे आपने कहा आध्यात्मिक, जो मल्लिकार्जुन जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से है वहां आपने जो है पहले वंदन किया, महादेव की पूजा की, उपासना की, उसके बाद आपने जो है अपने विकास के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारे परियोजनाओं को उन्होंने लोकार्पण किया और कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने पूरे देश को विकसित भारत 2047 का एक सपना दिया है। हमने जब अमृत महोत्सव बनाया था आजादी का 2022 में, तब ये तय किया था कि ये अमृत काल होगा और हम सर्वांगीण विकास समाज का और देश का करेंगे और ये विकास मात्र एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होगा, इसमें समाज का भी विकास होगा, स्वास्थ्य का भी विकास होगा, शिक्षा का भी विकास होगा और महिला सशक्तिकरण भी होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का होगा, वनवासी क्षेत्रों का होगा और देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जिसका विकास नहीं होगा। इसलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का महामंत्र दिया गया था और मैं समझता हूं कि ये उसी का अमली जामा पहनाने का आज भी प्रधानमंत्री ने कोशिश किया। ऐसे ऐसे कई परियोजनाओं को उन्होंने उद्घाटन किया, लोकार्पण किया, उसके नींव रखे जो आगे चलकर जो है स्थानीय स्तर पर लोगों को सहूलियत सुविधाएं प्रदान करेंगी, साथ ही साथ बेरोजगारी को खत्म करने में भी बड़ी भूमिका निभाएंगी, रोजगार पैदा करेंगी स्थानीय स्तर पर लोगों के, चाहे वो बिजली के माध्यम से जो है वहाँ औद्योगिकरण के लिए जो है एक रास्ता खुलेगा और औद्योगिकरण के लिए जब रास्ता खुलेगा तो स्वाभाविक कि रोजगार भी जो है वहाँ बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने एक आमूल चूल विकास का मंत्र लेकर जो है वहाँ कुरनूल पहुँचे हैं श्रीशैलम के बाद, और कुरनूल पहले ही आंध्र प्रदेश के कुछ समय के लिए राजधानी रह चुकी है और आज एक तरह से उसका आंध्र प्रदेश के अपने विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय आज का दिन रहा।
बिल्कुल, इसके पहले हम एक बार सुनते हैं प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ अंश सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
2047 में आजादी के जब 100 साल होंगे विकसित भारत होके रहेगा। अभी बाबू ने बहुत ही भावना के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी होने वाली है।
अब विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, आपसे अभी बात हो रही थी, आपने बताया कि कैसे आंध्र प्रदेश साइबर प्रदेश के रूप में, हैदराबाद भी एक साइबर सिटी के रूप में डेवलप हुआ है, आईटी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एलाइड सर्विसेज के वहां पर बहुत सारे प्रायोजन्स हैं और बहुत सारे कंपनीज भी वहां काम करते हैं। तो पीएम ने बात किया फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, आंध्र प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा ये सटीक बैठता है। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब शब्द हैं जिनको हम पिछले 2-3 सालों से बहुत ज्यादा सुनते हैं, मशीन लर्निंग की बात है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं आपकी भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं वो किस तरह से इस फील्ड में काम कर रही हैं? आज के दौरे पर भी प्रधानमंत्री ने इस पे बात की।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आंध्र प्रदेश के लोग, आप देखेंगे सिलिकॉन वैली में भी, यूएस में भी और अन्य पश्चिम के मुल्कों में भी उनका जो है एक वर्चस्व रहता है इस क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत काम किया है। बड़े बड़े कंपनियां जो है, हैदराबाद जिसको हम साइबराबाद भी कहते हैं, उसके स्थापना में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसी प्रकार कुरनूल को भी जो है एक तरह से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक हब के रूप में तैयार करने का प्रधानमंत्री की योजना है। और हमने देखा ड्रोन का, सिर्फ ड्रोन को हम एक सामरिक दृष्टि से देखेंगे तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हमारे ड्रोन कितने सफलतापूर्वक हम दुश्मन के ठिकानों को हम टारगेट कर पाए और हम भावलपुर तक हम लोग पहुंच पाए और ड्रोन के मदद से। और इसी प्रकार हमने जो पाकिस्तान से भी, पड़ोसी मुल्क से भी जो ड्रोन भेजे गए थे उनको भी हम जो है अपने माध्यम से हम उसे रोक पाए, ये हमारी क्षमता शक्ति है। तो मैं समझता हूँ कि ड्रोन के क्षेत्र में भारत ने बड़ा काम किया है, लेकिन भारत में ड्रोन का उपयोग मात्र सामरिक दृष्टि से नहीं है अपितु कृषि विकास के लिए जो है, छिड़काव के लिए, बीजारोपण के लिए। आज ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ आज हम ड्रोन का जो है उपयोग कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भी, दूरदराज के क्षेत्रों में। मैं समझता हूँ कि ड्रोन की बड़ी भूमिका है। हमने न्यूक्लियर पावर को मिसाइल बना के अपने सुरक्षा के लिए तो हमने रखा ही है, हमने एक बार नहीं दो दो बार पोखरण 1 और पोखरण 2 किया, लेकिन हम वहीं तारापुर जैसे प्लांट के माध्यम से एटमी ऊर्जा को हम सदुपयोग भी कर रहे हैं। उसी प्रकार हम सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, हम जो है उसको एग्रीकल्चर और साइंस, हेल्थ, इन सभी क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। और इसमें आंध्र प्रदेश के और पूरे देश भर के जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में कुरनूल एक बहुत बड़ा केंद्र, जैसे कि प्रधानमंत्री ने आज उसका नींव रख दिया है, वो निश्चित ही बनेगा और इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा।
बिल्कुल, कुछ प्रोजेक्ट्स जिनका प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया या उनके शिलालेख रखे हैं उस पे, एक उसमें से है कुरनूल 3 पुलिंग स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन का बढ़ोतरी किया है। ये ट्रांसमिशन कैपेसिटी करीब 6000 मेगावाट के बढ़ाने की क्षमता रखता है। और साथ ही साथ उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एरिया जो कि कुरनूल में है और एक कडप्पा में कुपारथी इंडस्ट्रियल एरिया, इन दोनों को ही एक्सपैंड और एनहांस करने का भी एक प्रोजेक्ट है। ये 4920 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे या जिसे कहें हाईवे, उसको ये सभावरम से शीला नगर को कनेक्ट करने का है जो कि प्रोजेक्ट है, जो कि 960 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पर है। तो इन सारी चीजों को देखने के साथ साथ प्रधानमंत्री ने एक और चीज का मेंशन किया, वो है जीएसटी रिफॉर्म्स। सुरेश जी, वो जीएसटी रिफॉर्म्स जो सितंबर 22 पिछले महीने ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये किक इन हुआ है, और गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि जीएसटी के कुछ इश्यूज हैं, जो स्लैब्स का इशू है उसको रैशनलाइज और बेटर किया है, तो उसमें भी मेंशन करते थे उन्होंने ये चीज बोला कि इसमें भी आप बढ़ चढ़कर जो बिजनेस इकोनॉमी है उसको फायदा मिले, बट साथ में वोकल फॉर लोकल का ध्यान रखें, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसका ध्यान रखें, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स खरीदने का प्रयास करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है बिकॉज अभी देश में दीपावली का पर्व आने वाला है, साथ में आगे छठ का पर्व है, तो ये भी मेंशन करने को हमेशा पीएम ध्यान रखते हैं।
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का जीएसटी में सुधार लाने का ही उद्देश्य यही था कि जनता के हाथ में ज्यादा पैसा आए और वो ज्यादा खर्च कर सके। बाजार में जब तक लोग खर्च नहीं करेंगे तो हम अपने मार्केट को वाइब्रेंट नहीं कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मात्र आंध्र प्रदेश के उपभोक्ताओं को ही 8000 करोड़ का लाभ मिला है इस जीएसटी के बचत से। तो ये जो जीएसटी के बचत उत्सव आज देशभर में मनाया जा रहा है, तो उन्होंने आह्वान दिया कि दीपावली जैसे उत्सव आ रहे हैं और आपने छठ का जिक्र किया, तो ऐसे में लोगों को बढ़ चढ़कर जो है खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो मूलभूत आवश्यकताओं का जो सामग्री है उनमें बहुत गिरावट आई है दामों में, अच्छा लाभ जो है जनता को मिल रही है। तो दूसरी तरफ जो हानिकारक है, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो या जो विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, ऐसों पर जरूर जो है जिसको आयातित करना पड़ रहा है उस पर निश्चित ही जो है जीएसटी बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इन सुधारों से जनता को काफी लाभ मिलेगा और निश्चित ही जो है लोगों को इस बचत उत्सव में भाग लेने की आवश्यकता है और ज्यादा से ज्यादा जो है खरीदारी करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रोत्साहित किया है।
बिल्कुल, इससे पहले हम आगे बढ़ें एक बार फिर से प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुनते हैं।
यहाँ लोग जीएसटी बचत उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप इतनी सफलता से सुपर जीएसटी सुपर सेविंग अभियान भी चला रहे हैं। मित्र लारा, मुझे बताया गया है कि आंध्र प्रदेश लोगों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेविंग होगी। ये सेविंग इस बार त्योहारों का आनंद और बढ़ा रही है। लेकिन मेरा एक आग्रह भी है, हमें जीएसटी बचत उत्सव को वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाना है। विकसित आंध्र से ही विकसित भारत का सपना पूरा हो।
जो कोर पॉइंट था जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे सुरेश जी की, मुद्दा यह है कि हम सेल्फ रिलायंट हों, आत्मनिर्भर हों, मुद्दा यह है कि हम जो है चीजों को इंडिजिनसली बनाने में सक्षम हो जाएं, साथ ही साथ हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनको प्रमोट करें। अब जब वैश्विक सिचुएशन देखते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो यूक्रेन रूस का युद्ध है, इसराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन की बात आती है कि जहां हम कई बार उस पर निर्भर हो जाते हैं और उसके कारण से हमें अपने इश्यूज होते हैं। एनर्जी तो हम काफी ज्यादा तादाद में इम्पोर्ट करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं आप जब भी प्रधानमंत्री इन बातों को टच करते हैं, तो ओवरऑल एजेंडा या उनका फोकस पॉइंट कहां रहता है?
देखिए, बिल्कुल भारत का राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रथम के नीति पर ही प्रधानमंत्री चलते हैं और हमारी जो विदेश नीति भी है बहुत ही प्रायोगिक एक विदेश नीति है। आदर्शवाद अपनी जगह है लेकिन भारत का हित किसमें है इसको हमेशा देखा गया है। तो इसलिए अमेरिका के साथ रिश्ता है, रूस यूक्रेन में शांति बनाने का प्रयास में भारत भी भागीदार रहा और भारत प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से भी बात की, पुतिन से भी बात की और अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता रखते हुए भी भारतीयों के हित में जो है रूस से कच्चा तेल खरीदते रहे। ईरान के ऊपर सैंक्शंस के बावजूद भारत कच्चा तेल ईरान से लेते रहे। इसका उद्देश्य है कि भारतीयों को जो है ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिले। इसलिए भारत और भारतीयों के हित को देखते हुए प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते हैं कि कम से कम जो महत्वपूर्ण, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसके लिए तो हमको निर्भरता होनी नहीं चाहिए। देखो, लग्जरी आइटम्स अगर दो चार कम भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना कि भाई घर में अगर मक्खन नहीं है तो चलेगा, लेकिन रोटी तो जो है उसकी व्यवस्था तो घर में ही होनी चाहिए। तो ये जो मूलभूत हमारे आवश्यकताएं आज के, चाहे वो सिलिकॉन चिप्स की हो, चाहे हमारे अपने हवाई जहाज की हो, चाहे हमारे अपने रक्षा के उपकरणों की हो, ऐसा ना हम निर्भर बन जाए जिससे कि कल को हमें कोई परास्त कर सके, कोई हमें ब्लैकमेल कर सके, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए लगातार मेक इन इंडिया जैसे और स्टार्टअप स्टैंडअप जैसे माध्यमों से युवा पीढ़ी को भी उन्होंने कहा है कि आप जो है उद्यमी बने, उद्योग जगत में उतरें। और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पिछले 11 साल में जितना मैं कहूंगा कि क्रांतिकारी परिवर्तन देखा है, जहां निजी क्षेत्र पर भी पूरा विश्वास किया गया और उनको भी प्रोत्साहित किया गया कि डिफेंस जैसे बहुत ही कृत्रिम क्षेत्र में भी पहल लें और उसमें बढ़ चढ़कर उनकी भागीदारी हो। तो मैं समझता हूं कि ये जो फोकस है, ये आत्मनिर्भरता, भारत को सचमुच अगर हम 2047 में विकसित भारत देखना चाहते हैं, हम मात्र दूसरे मुल्कों पर निर्भर होकर हम नहीं देख सकते हैं।
बिल्कुल, आपने ये भी बताया था हमें कि किस तरह से जो कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंडिजिनसली, जो यहाँ की लोकल टेक्नोलॉजी है उसको हम आत्मसात कर रहे हैं, साथ ही साथ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जैसी भी PLI जैसी भी स्कीम्स हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुनते हैं।
आंध्र में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है, निम्मलूरु में एडवांस नाइट विजन फैक्ट्री का आरंभ, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है। फैक्ट्री से नाइट विजन उपकरणों, मिसाइलों के लिए सेंसर और ड्रोन गार्ड सिस्टम बनाने का भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा। यहां बने उपकरण भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी नई ऊंचाई देंगे और अभी ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत के बनी चीजों की ताकत हमने देख ली है।
सुरेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाने की बात करते हैं प्रधानमंत्री, ये लागू होता है हर तरह के रॉ आइटम्स पे, सेमीकंडक्टर जैसे फील्ड में भी, उसके लिए भी हमने कई ग्लोबल कंट्री हब्स की बात की है, और साथ ही साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी की, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, डिफेंस टेक्नोलॉजी रिमेन्स अ वेरी कोर एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, चाहे वो सोवरेनिटी की बात हो इंडिया के या एक क्रेडिबल डिटेरेंस की जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसमें भी बड़ा हमेशा से स्ट्रेस रहा है प्रधानमंत्री का, तो क्या ये भी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्टेड है और इसीलिए हमें बहुत आत्मनिर्भर होना है?
बिल्कुल, निश्चित ही। आज देखिए, वैश्विक स्तर पर आज हम लोग जो है न सिर्फ विश्व को बहुत ही अत्याधुनिक हथियार हम प्रदान कर रहे हैं, अपितु कई विश्व के जो है उपग्रह जो है सैटेलाइट, उसको भी हम अपने लॉन्च पैड से हम लोग लॉन्च भी कर रहे हैं। और हम ही ने साइंस, जो एक समय में हम कहते हैं कि संजीवनी बूटी की बात की गई थी, तो पूरे विश्व को कोरोना के दौरान वैक्सीन प्रदान करने में भारत की बड़ी भूमिका रही है। तो भारत जो करता है वो पूरे विश्व को ध्यान में रख के करता है, उसका जो नीति का, उसका जो ध्येय वाक्य है वो वसुधैव कुटुंबकम है।
बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए, अपने अनुभव शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की आंध्र प्रदेश यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव।
सुर्खियों में